मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 26 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 मार्च से होने वाली क्लासेस के लिए अपना दाखिला लिया है। ये दोस्त हैं कोपेश कुमार, आप हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं, और अमित बिष्ट, आप देहरादून से हैं। तो कोपेश और अमित, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जरूरतों को देखते हुए, आज की खासकर आज की ही जरूरतों को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि आज मैं करंट अफेयर्स पर आपसे कोई विशेष बात नहीं करने जा रहा हूं। इनफैक्ट सच पूछे तो कोई बात ही नहीं करने जा रहा हूं। रेडियो न्यूज आप सुन चुके हैं, दूरदर्शन की खबरें भी शायद आप लोगों ने देख ली होंगी और अखबार तो डेफिनेटली पढ़े ही होंगे, और फिर आपको मैं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड ही कर रहा हूं। आप कह सकते थे फिर ऐसा रोज क्यों नहीं करते। नहीं मित्रों, आज मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो करंट से ही जुड़े हुए हैं, और यदि मैं अपना समय करंट अफेयर्स की उन घटनाओं पर दे दूंगा तो डेफिनेटली कहीं न कहीं इन दोनों टॉपिक के साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा, और चूंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसलिए मुझे लगा कि आज करंट अफेयर्स को हम ड्रॉप करके इन्हीं दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं। और इनमें से डेफिनेटली जो मुख्य विषय के तहत हम लोग बात करेंगे उसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर जो हम लोगों ने कल बात की थी उसे ही मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा, स्पेशली खासकर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। लेकिन इससे पहले मैं एक दूसरी बात पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और ये जो दूसरी घटना है दोस्तों ये खासकर तब घटी है आप कह सकते हैं जबकि सऊदी अरब के शहजादे जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान भारत की यात्रा पर आए थे। आपने देखा होगा, आप जो इंटरव्यू में स्टूडेंट गए हैं उनसे अगर पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पर बकायदे इंटरव्यू में पूछा गया था। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई सऊदी अरब से तो कोई खास ऐसी बात नहीं थी, वहां के युवराज भारत आए और आकर के चले गए, दूसरे देशों से भी आते रहते हैं और इससे पहले तो सऊदी अरब की इतनी बात नहीं हुई, इस बार क्यों इतनी बात हो रही है। यह आपके दिमाग में आ सकता है और इनफैक्ट आना भी चाहिए, और इसको ही जानना आप समझ ले कीजिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी है उसके तरीके को जानना है। देखिए, सऊदी अरब तो भारत के लिए वैसे भी शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है, हमारे बहुत से कामगार वहां काम कर रहे हैं, दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन अभी यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ अभी तनाव की स्थिति चल रही है, राइट? इसको थोड़ा सा कूटनीतिक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। तो भारत और सऊदी अरब के संबंध बहुत अच्छे हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, और इसमें जो त्रिकोण बन रहा है वो त्रिकोण ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर हम ये सोचें कि चूंकि हमारे सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं तो जैसे कि चाणक्य ने अपनी नीति दी थी, जो नीतियों के बारे में पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में वो बात करते हैं कि किस तरीके से दोस्त का दोस्त हमारा होगा और हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा, इस तरह की वो बात करते हैं। तो अगर हम सोचें कि चूंकि सऊदी अरब हमारा मित्र है तो वह पाकिस्तान को कुछ कह देगा या पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को शिथिल कर देगा क्योंकि वह हमारा दोस्त है, तो हम गलत सोचेंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब के संबंध हैं वो अपने आप में बहुत अधिक घनिष्ठ हैं, बहुत अधिक घनिष्ठ हैं, बहुत ही क्लोज रिलेशन में दोनों हैं। तो सीधी सी बात है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के विरोध में कुछ कहेगा, कुछ करेगा, कदम उठाएगा, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। तो फिर क्या सोचें? सोचना मित्रों यह है कि अभी जब वहां के शाहजादे भारत आए तो उन्होंने जो सबसे बड़ी जो बात कही जो हमारे फेवर में है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के का यहां आना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें दो बात हैं। पहली बात कि जो भारत के साथ बातचीत हुई है उसके तहत भारत इस बारे में बिल्कुल इंश्योर हो सकता है कि जो सऊदी अरब है वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, और याद रखिए कि सऊदी अरब बहुत अधिक मदद पाकिस्तान की करता है, यहां जोड़ करके देखिए, यानी कि भारत इंश्योर हो सकता है कि सऊदी अरब अपने संसाधनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि सऊदी अरब में अगर कहीं कोई इस तरह से जिहादी विचारधारा पनप रही है, यानी कि धार्मिक आतंकवादी विचारधारा, कहते हैं जिहादी विचारधारा, जो इसको एक तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को धर्म युद्ध का नारा दे देते हैं, उसे कह लीजिए जिहादी विचारधारा पनप रही है, या वहां कोई भारत विरोधी तत्व काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरब उन्हें नहीं होने देगा और बल्कि उन्हें रोकने की कार्रवाई भी करेगा। ये दो आश्वस्ति जो भारत को मिली है ये बहुत बड़ी आश्वस्ति है। देखिए, हमें उन चीजों के बारे में उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है वह बट नेचुरल है कि केवल अपने राष्ट्र हित में ही करता है, कि उसका हित कहां सधेगा। तो वो जो सऊदी अरब है डेफिनेटली वो पाकिस्तान के हिसाब से ही अपनी चीजों को समझेगा और उसी तरह से उस पर एक्ट भी करेगा। अब आप देखें कि जो भारत और पाकिस्तान के तनाव की स्थिति चल रही है, तो इसमें आप अखबारों में बार बार पढ़ रहे होंगे और यह सही भी है कूटनीतिक दृष्टि से कि भारत को कोशिश करनी चाहिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान को वो विश्व बिरादरी से अलग थलग कर दे, एक आतंकवादी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले देश के रूप में उसको बता दे, स्थापित कर दे, और दूसरा जो बड़ी बात है वो यह है कि जो इस्लामिक देश हैं उन इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल कर ले, क्योंकि देखिए पाकिस्तान खुद में एक इस्लामिक राष्ट्र है, तो इस्लामिक देशों का समर्थन हम हासिल कर लें। तो सऊदी अरब से तो हम हासिल कर पाए हैं, चलिए हम उस बात पर नहीं जाते। अब जो घटना एक और घटित हुई है मित्रों, जो बहुत बड़ी घटना है, वो ये है कि जैसे ही शाहजादे यानी कि सऊदी अरब के शाहजादे भारत की यात्रा से गए लौटे, तो भारत को एक बहुत महत्वपूर्ण आमंत्रण पत्र मिला, इनविटेशन मिला। नो डाउट कि ये इनविटेशन विदेश मंत्री के लिए है, और वह इनविटेशन है कि भारत को एक बहुत ही शक्तिशाली मंच है, मुस्लिम देशों का फोरम है, इनका संगठन है, जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका, जिसका नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन। इस मंच में इनका जो सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, और यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्य अतिथि न कहें, इस शब्द को सुधार लीजिए, विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मित्रों, इसको भारत ने जिस तरीके से लिया है, इस पर जो अपना वक्तव्य दिया है वो ये कि यह भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं, यह उस सम्मेलन में, उस फोरम में उनकी मौजूदगी का प्रमाण है, और साथ ही साथ यह इस बात का भी प्रमाण है कि भारत इनफैक्ट इस्लामिक जगत को कितना योगदान दे रहा है। डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ी बात है, और खासकर भारत और पाकिस्तान के संबंध में। तो मित्रों, ये जो मैंने तथ्य आपको दो बताए हैं, नंबर वन कि किस तरीके से सऊदी अरब के शाहजादे का भारत में आना भारत के लिए बहुत लाभदायक रहा है, वहीं दूसरी ओर कि किस तरह से जो अभी इस्लामिक सहयोग संगठन है उसमें हमारे विदेश मंत्री को जो विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और ये बात मैं इसलिए भी खासकर थोड़े से विस्तार के साथ बता रहा हूं क्योंकि अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कुछ इंटरव्यूज में आप में से बहुत से लोग जा रहे हों, और अगर जा रहे हैं तो कम से कम इस टॉपिक की आपको जानकारी थोड़ी सी बेहतर तरीके से हो जाएगी, ताकि वहां आप अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रख सकें। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय के तहत, जो हम भारत पाक संबंधों के बारे में बात कर रहे थे, और कल मैंने कश्मीर के मामले में जो भारत से थोड़ी सी चूक हुई है उधर आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया था, और अब मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ ले जाना चाहूंगा आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के तहत कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान क्या तर्क देता है। देखिए, भारत के तर्क आपको मालूम है, और जो बहुत ही ठोस तर्क है और बहुत ही संवैधानिक तर्क है, आप देख चुके हैं कि हमारा विलय बड़े संवैधानिक विलय है, महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, इससे बड़ा हमारे पास कोई तर्क अगर हो भी तो उसकी जरूरत ही नहीं है, और दुनिया इस बात को स्वीकार भी करती है। खैर, कश्मीर क्या तर्क, कश्मीर पर पाकिस्तान क्या तर्क देता है, आइए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। उसका पहला तर्क है कि कश्मीर की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो ज्यादातर मुस्लिम है, यानी कि यह कह लीजिए कि वो पूरा का पूरा क्षेत्र है वह मुस्लिम बहुल है, तो इसीलिए बट नेचुरल है कि विभाजन के समय कश्मीर पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, यह उसका तर्क है। दूसरा यह है कि अगर ज्योग्राफिकल सिचुएशन की दृष्टि से देखें तो जो पाकिस्तान के नजदीक जो सबसे पड़ता है इस साइड में वह कश्मीर है, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से भी कश्मीर पाकिस्तान के निकट है। हालांकि देखिए वो बात तो बेकार की बात है, अरे भैया पाकिस्तान के निकट है तो क्या वो भारत के निकट नहीं है? भारत के भी तो उतना ही निकट है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में ही कश्मीर है ना, तो जितना निकट वो तुम्हारे है उस दूसरी दिशा में तुम्हारी निकटता है, इस दिशा में हमारी निकटता है। लेकिन अब ठीक है, उनको अपनी बात रखनी है तो वो रखेंगे ही। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि बिना जनमत संग्रह के कश्मीर का अगर भारत में विलय कर लिया गया है तो ये सही नहीं है, ये अवैध है और इसे पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता। अब सवाल यह है कि भाई आप स्वीकार करने न करने वाले कौन होते हैं? एक सीधी सी बात है कि उस समय जो व्यवस्था की गई थी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था, बकायदे विभाजन की रेखा खींच दी गई आप जानते हैं, और जो कुछ जो दूसरी रियासतें थी वह उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप चाहे स्वतंत्र रहिए, चाहे आप जिसमें भी मिलना चाहे आप मिल लीजिए। तो दोनों चीजें, कश्मीर के शासक ने स्वतंत्र रहने का फैसला नहीं किया क्योंकि आपने अटैक कर दिया था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, वो शायद सोच रहे हो कि हम स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान में तो वो जाना ही नहीं चाहते थे, और फिर उन्होंने बकायदे विलय पत्र पर भारत के पक्ष में हस्ताक्षर कर दिए, तो ये अवैध कैसे हो गया? जनमत संग्रह की तो यहां कोई बात ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बिना जनमत संग्रह के कश्मीर का भारत में विलय अवैध है? लेकिन ठीक है, आपको कुछ कहना है तो आप कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, लेकिन इस तर्क में कोई दम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि जो जनता है वहां की वो भारत से आजादी चाहती है, पता नहीं किस जनता की बात कर रहे हैं, जनमत संग्रह हुआ नहीं है और आप कहते हैं कि वो भारत से आजादी चाहती है, आपके दो चार दस बीस पचास जो आतंकवादी लोग हैं वो ये नारा देते हैं और या वहां के कुछ लोगों को भड़का करके आप इस तरह के प्रदर्शन करवा देते हैं और उसको पूरी जनता मान लेती है, जबकि जनता वहां की सही मायने में भारत के साथ ही रहना चाहती है, आप तो रहने दीजिए उसको। और फिर आखिरी तर्क मित्रों वो ये भी दे देते हैं कि जो पाकिस्तान की जो सीमा है, वो कश्मीर की जो सीमा है सबसे लंबी, वो पाकिस्तान के साथ है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ, चूंकि उसकी सबसे लंबी सीमा है तो कश्मीर को पाकिस्तान का होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं होती है। उसके दूसरे बहुत से कारण होते हैं कि किस देश को या किस राज्य को किस में शामिल होना चाहिए। तो ये कश्मीर हमारा है पाकिस्तान जो तथाकथित रूप से कहता है, ये उसके कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पर्याप्त होंगे। देखिए मैं कोई एक्सपर्ट के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में ही आपसे बात कर रहा हूं। अब आप देखिए कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको हम कहते हैं पीओके और पाकिस्तान इसको कहता है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर यानी कि जो कश्मीर से आजाद हो गया है वो आजाद कश्मीर, मानो कि जो दूसरा कश्मीर है वो गुलाम कश्मीर है, शायद इसी को सिद्ध करने के लिए वो कहते हैं उसे आजाद कश्मीर। इस आजाद कश्मीर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं क्योंकि लेखों में चर्चा कहीं ना कहीं आ जाती है। पहली बात तो यह है कि इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो नया मीरपुर है, इसकी चर्चा कभी कभी अखबारों में आपको पढ़ने को मिल जाती है, मीरपुर, नया मीरपुर। इसका जो क्षेत्रफल है मोटे तौर पर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, पीओके का जो क्षेत्र है 13,000 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स इसकी जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, लगभग 50 लाख के करीब है, लगभग मैं बात कर रहा हूं 45 से 50 लाख के बीच में है पॉपुलेशन है इसकी। इसकी जो राजधानी है, देखिए पाकिस्तान की अपनी राजधानी है ना, लेकिन इसकी जो आजाद कश्मीर है, इसका जो पूरा का पूरा जो सिस्टम काम करता है वो अपने आप में एक तरह से एक इंडिपेंडेंट काम करता है, आजाद कश्मीर है ना ये, इसको आजाद कश्मीर पाकिस्तान कह रहा है, भारत के लिए ये पीओके है, तो इसकी जो राजधानी है जो अपने आप में ये काम करता है वो है मुजफ्फराबाद। तो ये शब्द भी आपको कभी कभी पढ़ने को मिलेगा तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो सिस्टम है, जिस तरीके से ये काम करती है, मैं आपको आपके सामने अंग्रेजी के कुछ शब्द रख रहा हूं, शायद उससे ज्यादा क्लियर हो। एक तो ये सेल्फ गवर्निंग है, मतलब ये जो पीओके है ये अपना अपनी सरकार खुद बनाता है, सेल्फ गवर्निंग है ना इसका, ये पाकिस्तान की सरकार से नहीं चलती है। लेकिन पॉलिटिकली ये पाकिस्तान के द्वारा प्रशासित है, सब अपना ये सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जबरदस्ती चूंकि पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है तो पाकिस्तान अपने राजनीतिक अधिकार उस पर जताता रहता है। ये जो पीओके है इसमें टोटल 10 जिले हैं, इनकी अपनी विधानसभा है, उनमें चुनाव होते हैं और उस विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 49 है, मेरे समझ से 49 है। तो दोस्तों ये यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो आप देखिए कि लगभग लगभग ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि इतनी बातों को जानने के बाद शायद कश्मीर के बारे में आपके दिमाग में बहुत अच्छी स्पष्टता आ गई होगी। फ्रेंड्स, तो अब अपने मुख्य विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसे देख लेंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए, मैं अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।